कर निखरेगा जीवन तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। हमारी इस तपस्या भट्टी में आज का हमारा स्वमान है, मैं तपस्वी मूरत हूँ और हम चलते फिरते तपस्या की सचमुच ही मूरत बन जाएं। इसी मार्गदर्शन के लिए आज भट्टी के हमारे पहले सत्र में हमारे बीच आदरणीय राजू भाई जी है। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय राजू भाई जी को हम सभी भली भांति पहचानते हैं। बहुत सारे भाई बहने आए दिन यूट्यूब वगैरह पर आपकी क्लासेस सुन ही रहे हैं। मैं आपकी विशेषता को यहाँ जरूर बताना चाहूंगी। जब से यज्ञ में आए हैं आपकी सबसे बड़ी विशेषता क्रिएटिविटी, रचनात्मकता रही है। जिस भी फील्ड में आपने सेवा के हिसाब से जिम्मेवारी ली, चाहे हमें रोज साकार और अव्यक्त मुरलियां मिल रही है, चाहे मुरलियों में वरदान और स्लोगन मिल रहे हैं, प्रश्नोत्तर मिल रहे हैं, चाहे तपस्या के लिए समय प्रति समय पॉइंट्स मिलती है, ये आपकी ही गहरी स्टडीज का आउटकम है। जब से ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन के रूप में आपने अपने कार्यभार को संभाला है, आपने ग्राम विकास विंग को भी पर दे दिए हैं और बहुत तेज गति से सेवा में आगे बढ़ रही है। वाणी की विशेषता तो जैसे आपको बाबा का मिला हुआ वरदान है, कोई भी विषय की तह तक चले जाना और उस विषय को खोल करके स्पष्ट करना, ये आपकी दूसरी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं आपसे आज अनुरोध करती हूँ कि आज इस तपस्या भट्टी के शुभारंभ में तपस्या का फाउंडेशन त्याग, इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय राजू भाई जी। इंतजार तो कर रहे होंगे दादी जी, हम सबके बीच थोड़े समय में आएंगी, तब तक हम आज भाई साहब से पहली क्लास सुन लेते हैं।
ओम शांति। आप सब बाबा के सपूत बच्चे, आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया, जिन्होंने अपना तन मन धन सब इंसोर्ड किया है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो किया है, वो बाबा के सच्चे सपूत बच्चे हैं। और ब्रह्मा बाबा की तपस्वी जीवन हम सबके आगे उदाहरण है। साकार में इतने सब बच्चों की पालना करते, यज्ञ की रेख देख करते, कैसे तपस्वी जीवन में रहे और अंदर से कितना त्याग बाबा के चरित्रों में सुनते आए हो, आप सब जानते हो, और इस धरनी पर जब आते हैं तो उनके त्याग के कई चिन्ह यहाँ दिखाई देते हैं। स्थूल में भी बाबा ने जो त्याग किया आज उसका कोई उदाहरण नहीं है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जैसा ब्रह्मा बाबा का त्याग था। जब इस पांडव भवन में ये नया भवन बना था, ये आपके बिल्कुल मेडिटेशन के बाजू में, इसका नाम है हवाई महल, ऊपर एक एरोप्लेन है। बाबा ने दो मकान बनवाए, जहां पर दो मरगोल हैं उसका नाम दिया एरोप्लेन, सबसे ऊंचा था, और वहीं पर बाबा झंडा लहराने जाते थे। और ये जो भवन है एरोप्लेन, ये हवाई महल, तो जब ये भवन बन के तैयार हुआ तो बाबा का ये पुराना मकान जहां पर अभी कमरा है, ये टीन सीट का है, और टीन तो बरसात में टपकने लगती है, तो सबने बाबा को कहा, बाबा ये भवन जो बनाया है इसमें आप एक कमरा लो, इसमें रहो, क्योंकि बाबा के कमरे में लेटरिन बाथरूम भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और एज तो जानते हो 90 के ऊपर हो गई बाबा की। फिर भी बाबा हमेशा कहते थे नहीं, ये पुराने शरीर में शिव बाबा आता है और मुझे बच्चों को नए मकान में रहना है, बाबा तो पुराने ही मकान में रहेगा। उसके बाद ये मकान थोड़ा सा ठीक किया गया में, बाबा का कमरा भी है। जब मैं 71 में आया था तो बहुत छोटा कमरा था, उसको तोड़ करके उसको बड़ा रूप दिया है, बैठने के लिए सभी आए, जितनी गद्दी और चारपाई है वहीं दरवाजा था, वहीं पर दीवार थी, और बाहर बरामदे में छोटा सा एक कुर्सी पड़ा रहता था बाबा का बैठने का। तो बाबा इसी भवन में रहे, लास्ट तक किसी में तपस्या की, और त्याग तो उनका प्रैक्टिकल हर पल दिखाई देता था, कभी कोई महिमा करे, कोई बाबा के लिए कोई सौगात लेके आए, कोई चीज लेके आए, तो बाबा कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक भी कहते थे, बच्चे ये पतित शरीर है, इसको फूल भी क्यों देना है, फूल भी कभी बाबा ने स्वीकार नहीं किए। तो त्याग तो स्थूल रूप में था ही, लेकिन सूक्ष्म में भी बाबा की त्याग वृत्ति से ही इतने बड़े यज्ञ की स्थापना हुई, और इसका त्याग के आधार से ही फाउंडेशन पड़ा है। दादी जानकी जी अभी आपको मिलेंगी, उनकी त्याग वृत्तियों का बहुत बड़ा इतिहास है, कैसे त्याग करते करते कोई भी चीज स्वीकार नहीं की और इतना बड़ा विस्तार स्थापना का किया। लंदन में जाके देखे तो लगता है क्या राजधानी बनी है, कितने सेवा केंद्र, कितने बड़े बड़े भवन। और दादी कभी कभी सुनाती है, जब मैं पहले पहले गई थी तो कोई एक दरवाजा अपने घर का बाहर निकाल के रख गया था, क्योंकि जब कोई चीज फेंकनी होती थी तो वो अपने घर के बाहर रख देते थे। तो एक दरवाजा दिखाई दिया दादी को, अच्छा लगा, बाहर रखा था, तो दादी उसको लेके आ गई कमरे में, मकान में, और उसी दरवाजे के नीचे कुछ ईंटे कुछ सामान रख करके उसको तख्ता बनाया, और उसी पर सोती थी, उसी पर क्लास कराती थी। तो वो त्याग वृत्ति लंदन की स्थापना की, कैसे उन्होंने सेवाएं शुरू की, और एक ही कमरा छोटा सा, अभी भी इसको छोड़ा नहीं है लंदन में, और उसी स्थान पर रह करके, उसी गद्दी पर बैठ करके सोना भी, क्लास भी कराना, और वही कमरा एक था, और अभी तो देखो क्या विस्तार हुआ है। उनकी त्यागमय जीवन तपस्या का जो प्रतीक है, जो दिखाई देता है कि कैसी त्यागी आत्माएं कुछ भी अपने लिए स्वीकार नहीं किया, जो कुछ है सब बाबा का, बाबा की सेवा के लिए है। तो तो त्याग वृत्ति से हम देख रहे हैं आज यज्ञ की नींव इतनी मजबूत बनी है, जो आज इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा विस्तार हुआ है, सब कुछ बाबा ने साधन सुविधाएं दी हैं, लेकिन किसी पर भी कोई का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा है, मेरा कमरा है, मेरी चारपाई है, मेरा है। तो ये बाबा ने मेरेपन का त्याग करा दिया, मैं और मेरेपन का त्याग। सबसे बड़ा त्याग तो यही है, क्योंकि तपस्या के लिए वास्तव में आंतरिक त्याग की आवश्यकता है। तो लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग उनको क्या दिखाई देता है, कहते हैं सब देखो घरों घर गृहस्थ में रहते हैं, सफेद साड़ी पहनने लगे, क्या सफेद ड्रेस पहनते है, ये तो अब शगुन मानते हैं लोग। भाइयों के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन विशेष करके माताओं के लिए जरूर कहेंगे, ये तो साड़ी सफेद क्यों पहनाते हैं इनको। और दूसरा फिर कहेंगे जब सवेरे सोने का समय है, इस समय कहते उठ करके भगवान को याद करो, अमृत वेले योग करो। तो कई बार नींद के त्याग को लोग त्याग समझ लेते, वस्त्रों के त्याग को त्याग समझ लेते, कभी हम कहीं बाहर खाते पीते नहीं है, पार्टीज में नहीं जाते हैं, तो कहते बड़ा त्याग है इनका, ये तो क्या त्याग है। तो इस त्याग को देख करके कई लोग डर जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे तुम अपना त्याग नहीं दिखाओ, अपना भाग्य दिखाओ, कि इसको अगर छोड़ा है तो मेरा भाग्य कितना बड़ा बन गया है। भाग्य या त्याग है, पक्का निश्चय है ना, त्याग है भाग्य है, ये त्याग में ही बड़ा भाग्य है। क्योंकि आजकल आप देखो अगर हम सफेद ड्रेस पहन रहे हैं तो एक तो शांति का पवित्रता का प्रतीक भी है, और दूसरा अगर इस पर जरा भी कहीं छींटा लग जाए, कोई थोड़ा सा दाग लग जाए तो धोना पड़ेगा, और एक वस्त्र दूसरे दिन नहीं पहना जा सकता क्योंकि गंदा हो जाएगा, दिखाई देगा, इसलिए उसको साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, और स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे तो चमड़ी की बीमारियां नहीं होंगी, नेचुरल है, लाभ ही लाभ है। और सवेरे सवेरे शुद्ध पवन में जब प्रकृति की गोद में सूर्य निकलने वाला होता है, उसके पहले उठते हैं तो चारों ओर की ऑक्सीजन का प्रवाह मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अगर उस समय कोई सैर करे, एक्सरसाइज करे, योग अभ्यास करे, तो आत्मा और शरीर दोनों अमृत वेले उठने से शक्तिशाली हो जाते, निरोगी बन जाते। और अगर हम कोई बाहर चीजें नहीं खाते हैं तो आज देखो सारी तंत्र मंत्र जंत्र लोग खिला पिला के ही करते हैं, और जितनी बीमारियां हो रही हैं आज सब बाहर के खान पीने से हो रही है अधिकतर। तो ये कोई वास्तव में हम लोगों ने त्याग नहीं किया। त्याग है क्या लगता है आप लोगों को, त्याग है? बाबा ने कहा बच्चे ये कोई त्याग नहीं है, तो बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन जो हमारा आंतरिक त्याग है वो तो दिखाई नहीं देता, उसमें आजकल दुनिया उसी चक्रव्यूह में फंसी हुई है, और बाबा ने हमें उस चक्रव्यूह से निकाल लिया। और वो इतना सूक्ष्म है त्याग, जिसको बाबा कहते हैं सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का त्याग। हर इंसान इस देह के अंदर फंसा हुआ है, देहिक भान में ही सदा रहता है, कभी कोई कर्मेंद्री धोखा देती है, कभी कोई कर्मेंद्री धोखा देती है, कहीं न कहीं कर्मेंद्रियों के अधीन है। और हम सब ने जब से बाबा के बने, बाबा को पहचाना, आत्मा का सत्य ज्ञान मिला, तो ये देह अभिमान जो बार बार अटैक करता था उसका हमने त्याग किया। आत्म अभिमान स्थिति तपस्या है, और देह अभिमान का त्याग ही त्याग है। तो जिस आत्मा ने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया जब से बाबा मिला, तो इस आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने की प्रैक्टिस किया, तो नेचुरल है देह अभिमान की विचारधाराएं चेंज हो गई। जो हम अशुद्ध सोचते थे, बोलते थे, खाते पीते थे, अगर किसी ने देह मान का त्याग किया है तो बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा। सबसे बड़ा त्याग यही है। और सारी दुनिया जब फुल बॉडी कॉन्शियस में है, देह मानी है, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा शास्त्र पढ़ा हुआ हो, कितना भी बड़ा पद पोस्ट पर हो, लेकिन अभिमान को कोई नहीं छोड़ पाया। मैं तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और बाबा ने इसी मैं को मार दिया, कहा बच्चे बकरे की बलि नहीं चढ़ाओ, इस मैं की बलि चढ़ा दो। इस मैं की बलि अगर चढ़ा दिया तो तपस्वी जीवन स्वतः बन जाएगी। तो जब आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती है, देह अभिमान को जीत लेती है, आत्म अभिमान स्थिति में नेचुरल रहने लगती है, तो उसके लिए तपस्या बहुत सहज है। तपस्या ये नहीं है कोई हम एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, कोई अन्न जल छोड़ करके तपस्या कर रहे हैं। लोगों ने ये हद की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें अपनाई हैं, उनको तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको तपस्या के बड़े गहरे अर्थ बताए हैं, और वो तपस्या के तीन अर्थ मैं आपको बताता हूं। अगर सचमुच तपस्वी जीवन किसी को बनानी है तो पहली बात, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा की लगन में मगन रहना, एक की श्रेष्ठ स्मृतियों में खोए हुए रहना, एक के सिवाय और कोई दूसरा बाबा ना आए, बाबा के सिवाय और कोई दूसरा सामने ना आए बीच में, यही वास्तव में सच्ची तपस्या है। जब से बाबा के बने हैं अंदर से आता है तू मिला जहान मिल गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस आत्मा ने बाबा से सर्व संबंध जोड़ लिए, जिस आत्मा की वृत्तियां केवल एक वृत्ता बन गई, पिता व्रता बन गई, पति व्रता बन गई, एक तुझे ही देखूं, तुझसे ही खाऊं, तुझसे ही सुनूं, तो इससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं, यही तपस्या है। और इस तपस्या के आधार से कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार की बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती। तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चे तपस्वी जीवन में रहें। तपस्या एक दो घंटे की नहीं है, तपस्या तो हमारी निरंतर चलती रहे, क्योंकि एक के सिवाय और कोई स्मृति में ना आए, तो पहली तपस्या ये है। और दूसरा तपस्या का बहुत सुंदर स्वरूप बाबा ने हम सबको सुनाया है, संकल्पों में दृढ़ता। दृढ़ता ही तपस्या है। जितना आप कोई संकल्प लेते हैं उसके अंदर वो शक्ति है कि कुछ भी हो जाए ये संकल्प हमने धारण किया है। मान लो आज बाबा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का संकल्प दिया कि बच्चे अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में परमात्मा को नई सृष्टि की रचना में केवल आपकी पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का सहयोग चाहिए, और सब प्रकार का सहयोग देने वाले हैं, लेकिन ये सहयोग देना ही सच्चा सहयोग है। तो जो आत्माएं प्रवृत्ति में रह करके पवित्रता का संकल्प दृढ़ता से लेती हैं, कुछ भी हो, कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी लोग कुछ कहें, क्योंकि कहने वालों की तो आज भरमार है। और बड़ा अच्छा एक स्लोगन पिछले क्लास में मेरा निकला था, मुझे याद आता है, सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो सब कुछ कहेंगे। जब आप एक अच्छे मार्ग पर चले हो, सत्य मार्ग पर चले हो, और इसकी वैल्यू को समझा है, और किसकी श्रीमत मिल रही है और किस लिए कहा जा रहा है उसको यथार्थ रीति से समझ करके निश्चय बुद्धि अगर बने हो, तो इसको दृढ़ता के साथ पालन करना, कुछ भी हो जाए मैं इस व्रत को नहीं तोड़ सकता। जो इस व्रत में पक्के हैं, दृढ़ता से व्रत लिया है, वही तपस्वी। तीसरा बाबा कहता है तपस्या के लिए आसन चाहिए, और वो आसन है एक रस एकाग्र चित्त स्थिति का। सब रस, जो रस आजकल के व्यक्तियों को आकर्षित कर रहे हैं, देखने का, बोलने का, खाने का, चलने का, घूमने का, सैर करने का, बहुत सारे रस हैं कलयुग के अंदर, और उस रसों के पीछे हर इंद्रिय अपने अपने रस को खींच रही है, उसके पीछे आकर्षित हो रही है। तपस्वी आत्माएं इन सब रसों से उपराम होकर के एक रस स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, एक से सब रस लेने वाली आत्मा तपस्वी कहलाती है। उसकी स्थिति में एक रस हो जाती है, छोटी छोटी बातें उसको डिस्टर्ब नहीं करती। कोई ने महिमा कर दी, बहुत नशा चढ़ गया, कोई ने थोड़ी सी ग्लानी कर दी, कोई ने कुछ अपसेट ऐसे शब्द बोल दिए जो स्थिति बिगड़ गई। देखना, तपस्वी आत्माएं अपनी स्थिति को, अपने मूड को सदा एक रस रखेंगी, हलचल में नहीं आएंगे। कैसी बातें आ जाएं, चाहे अपने इस परिवार से, क्योंकि अभी कभी कभी लौकिक की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको तो जानते ही है ही अज्ञानी, अज्ञानी समझ करके अगर उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इनको पता नहीं है। लेकिन अगर हमारे इस परिवार के अंदर कोई ऐसी बात हो जाती, कोई कुछ कह देता है, कभी अपसेट हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो उसके कारण कई बार आत्माएं इतनी अपसेट हो जाती हैं कि देखो हमने लौकिक को छोड़ा, अलौकिक में आए, और इस अलौकिक में भी आज क्या हमारी गति, हमारी कोई पूछता नहीं, हमारे कोई मान नहीं, कोई महिमा नहीं। तो वर्तमान समय हम आप सब जानते हैं कि हमारी स्थिति का दर्पण, हमारी अंदर की जो प्राप्तियां हैं, जो हमारी आशाएं हैं, उसके आधार से हम परख सकते हैं किस प्रकार की हमारी स्थिति है। और अगर तपस्वी आत्माएं अचल, अडोल और एक रस स्थिति में रहती हैं, तो वास्तव में सच्ची तपस्या जो आंतरिक वृत्तियों में त्याग ले आती है, त्याग तपस्या का आधार है, और तपस्वी आत्माएं स्वतः हर बात का त्याग कर देती, महिमा मिले न मिले, कोई पूछे न पूछे, बाबा की बेहद सेवा के लिए वो निमित्त बन जाती हैं। तो हम सभी त्याग वृत्ति के आधार से तपस्वी बने, और तपस्या करते करते जो सूक्ष्म में आशाएं हैं, तीन चीजों का त्याग और गहरा त्याग है, एक कई प्रकार की आशाएं उत्पन्न होती, जिसको कामनाएं कहते हैं, ये कामना, ये कामना, ये कामना, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं और कुछ तृष्णाएं हैं। बहुत सूक्ष्म बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई तमोगुणी आशा रहती है, उस तमोगुणी आशा को तृष्णा कहा जाता है, और उन तृष्णाओं के पीछे आत्माएं आजकल ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बुद्धि भटक रही है। जब तक इन तृष्णाओं का त्याग नहीं किया, इन इच्छाओं का त्याग नहीं किया, आशाओं का त्याग नहीं किया, कहीं न कहीं मृग तृष्णा की तरह हम भाग रहे हैं उसके पीछे, तब तक तपस्वी जीवन नहीं बन सकती। तो इसलिए हम सब त्याग मूरत और तपस्वी मूरत बन करके रहे, तो मैं समझता हूँ, मेरी दादी जानकी जी आ रही हैं, हम सब बहुत प्यार से दादी जी का स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा बाद में क्लास होगा, दादी मिल लेगा, नहीं नहीं 10 मिनट। ओम शांति। ये भी आप सबकी तपस्या का फल है, है ना, तपस्या का ही फल है ना, क्योंकि इतनी बड़ी एज में डॉक्टर छुट्टी नहीं देते हैं पागी में आने की, मौसम ठीक नहीं है, लेकिन दादी जी की जो विल पावर है ना, उसके आगे प्रकृति फेल है। हाँ, इंतजार हो रहा है, मुझे पता है, मैं नागपुर हो के आया, अभी देख के आया सब कैसे चल रहा है युद्ध स्तर पर काम, अभी 10 दिन पहले गया था मैं, पूरा देखा सारा, टोटल सब लगे हुए हैं, दिन रात एक किया हुआ है। अच्छा है, बड़े जहां जाते हैं वहां पर जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो ये भी एक आप सबकी लगन तपस्या है, क्योंकि बाबा ने अभी गिनी चुनी दादियां रखी, बहुत कम रह गई, 4 दादियां मधुबन में, कल एक हमारी कमलमणि दादी चली गई, उड़ गई, है? 5 तो हमारी प्रैक्टिकल दादियां हैं ही, लेकिन एक दादी गुप्त है, पता नहीं आपको, मीरा बहन तो यहाँ ही है, वो भी भोली दादी की बेटी है, यहीं रहती है, बड़ी आयु है, और एक है हमारी कृष्णी दादी की बेटी मोहिनी बहन, जो कुलाबा में रहती है, कुलाबा में दादियों में वो भी है, पुरानी है बहुत, माना उसी समय आई थी जब यज्ञ स्थापित हुआ, तो ये 7 मूर्तियां बची हैं, 4 यहाँ हैं, जानकी दादी, गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, सो दादी, और आपके दिल्ली में रुक्मणी दादी, 5, और ये 2, 7। तो 7 रत्न बचे हैं, शुरू में आए थे 380, तो स्थापना कितनी फास्ट गति से हुई है, हो रही है, और परिवर्तन कैसे हो रहा है वो भी हम सब देख रहे हैं। हम सबको अभी समय की सूचना तो मिलती रहती है, तैयार हो जाओ, अचानक घंटी बजेगी, उड़ेंगे पंछी। तो इसके लिए ही हम सब बीच बीच में गोल्डन चांस लेते हैं मधुबन की भट्टी का। भट्टियां तो सब जगह करते हैं, आप अपने अपने स्थानों पर भी करते हैं, शांतिवन में भी समय प्रसमय होती है, लेकिन ये जो स्थान है ये अपने आप में बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि स्वयं भगवान ने जहाँ पर बच्चों के साथ बहुत समय तक सर्व संबंधों का अनुभव कराया। ये जो स्थान है, यहाँ से आप बाबा के कमरे से, कुटिया से कमरा और कमरा से शांति स्तंभ पर अगर जाएंगे तो ये बाबा के पैदल करने का स्थान था, इसलिए जैसे एक बहुत बड़ी तपस्या की एक रेखा है ये। कोई कोई नए नए आए हैं जो कहते हैं आते ही कि ये जैसे चुंबक है कोई, और इस स्थान से इधर कोई चला गया तो गति सदगति हो जाएगी। तो बाबा ने यहाँ पर बहुत समय खुद रह करके तपस्या की है। सुबह 4 बजे, एक दिन की बात सुनाता हूँ, ये जो अभी ऑफिस बने ना, इधर 3-4 ऑफिस बने हुए हैं निर्भय भाई जी का, विजिटिंग रूम, यहाँ एक थल्ला आया, तो थल्ले पर हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे 3-4 भाई। तो दादी जी पैदल करती थी, दादी प्रकाशमणि जी पैदल करती थी, यहाँ से गेट, यहाँ से निकलती थी अपने ऑफिस से और गेट तक पैदल जाती थी। तो हम 3-4 भाई ऐसे बैठे थे, तो एक दिन खड़ी हो गई, कहती है तुम लोग यहीं क्यों बैठते हो? तुमने कहा दादी ये स्थान बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ बैठने से बड़ा अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। कहती तुमको पता थोड़ी है यहाँ पर क्या होता था, ये जब पहाड़ी थी तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ऊपर आके खड़े हो जाते थे, पहली पहाड़ी थी, चट्टान थी, तो यहाँ पर बाबा खड़े होते थे और हम सब बाबा को ऐसे घेर करके आधा घंटा तक योग करते थे, 1 घंटा तक खड़े रहते थे, बाबा ऐसे सकाश देता था लाइट हाउस बन करके, और वो दृष्टि लेते लेते हम सब यहाँ पर खो जाते थे। तो ये बाबा का तपस्या का स्थान है, इसलिए आप लोगों को खींच होती है। तो एक स्थान पर नहीं, जहाँ पर आप इस हाल में बैठे हो ना, ये भी बहुत बड़ी पहाड़ी थी, यहाँ हम लोग कपड़े सुखाते थे, यहाँ धोते थे, धुलाई करते थे, यहाँ सुखाते थे, तो यहाँ कपड़े सूखते थे। तो ये बाबा साकार में इस स्थान पर कहते थे ऐसा हाल बनाएंगे जिसमें ट्रेन के डिब्बे जैसा, एक कमरे में जैसे होते ना 1, 2, 3 फ्लोर ऐसे 3 टायर, तो यहाँ पर 3 टायर कमरे बनाएंगे, क्योंकि स्थान कम पड़ता जाता था बाबा के समय, बच्चे आते थे 100 लोग आ गए तो कहते थे बहुत बड़ी सीजन है, तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चे आओ मेरी चारपाई के नीचे सो जाओ। तो बाबा के कमरे में आके बाबा की चारपाई पे सो जाओ। तो ऐसे ही बाबा बहुत रमणीक थे, बहुत प्यार से बच्चों की पालना करते, कहते बच्चों के लिए यहाँ पर एक ट्रेन बना देंगे, ट्रेन। तो ये बाबा की नजर बड़ी, फिर दादी ने कहा ट्रेन तो अभी नहीं, कोई सोएगा नहीं, यहाँ हाल बना देते। तो दादी जी ने फिर हाल 90, मैं समझता हूँ ये 74 में बना, 74-75 में, उसके बाद ओम शांति भवन बहुत बाद में बना, 83 में बना है। तो ये हाल बना, उसके बाद बाबा का अवतरण यही हुआ, कच्चे हाल में ही हो गया था, जब बन रहा था तो यहाँ जो स्थान है ना, ये भाई बैठे हैं इस स्थान पर बाबा को बुला लिया, अव्यक्त बाबा को पहली पहली मुरली चलाई कच्चे हाल में ही, ये प्लास्टर ये कुछ नहीं था। और बाबा ने क्या वो मुरली 75 में चलाई, धड़ाधड़ खूब अच्छी शिक्षाएं दी अव्यक्त बाबा ने। तो इस स्थान पर भी बाबा बहुत समय तक अव्यक्त रूप में बच्चों से व्यक्तिगत पर्सनल मिलना हुआ है। कई ग्रुप मिले होंगे, आप लोग मिले यहाँ पर इस हाल में, कौन कौन मिला है? नहीं कोई आए हैं? आप भी नहीं मिले सुरेंद्र भाई? अच्छा आप लेट आए। तो इस हाल में एक बार की एक बात सुना देता हूँ, तपस्या की बात बाद में सुनाऊंगा। दादी यहाँ बैठी थी, बाबा आए अव्यक्त बाबा, तो ऐसे ग्रुप खड़ा था, ग्रुप खड़ा ही होके मिलता था, अकेले के लिए छोड़ दिया था बाबा ने मिलना। ग्रुप आता था 5, 10, 20 का, तो बाबा के सामने से खड़ा हो जाता था। और हम लोगों का यहाँ पर कैबिन था, यहाँ माइक वाले बैठते थे और मैं यहीं बैठ के लिखता था साथ में पूरी नाइट, क्योंकि उस समय बाबा का पार्ट का कोई लिमिट नहीं था। शाम को 7 बजे बाबा आए गए, आए तो सुबह 7 बजे तक बैठे हैं और एक एक बच्चे से मिल रहे हैं, ग्रुप से मिल रहे हैं। तो रात को ऐसे ही एक ग्रुप आया, तो उसमें एक बड़ा नशे में कोई भाई था, बहुत ज्यादा ही नशा था उसको, तो ऐसे ही खड़े खड़े बाबा के ऊपर गिर गया। अब दादी का रथ तो दादी का है, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, तो गिरा, तो हम लोग जब तक उठे तब तक तो गिर चुका था हाथ पर और चोट लग गई होगी जरूर, दादी का तो कमजोर रथ, तो इसके ऊपर गिरा करके। तो बाबा ने कहा उठाओ बच्चे को, उठाओ बच्चे को। तो सबने मिलकर के उसको खींच करके, हमारे पास एक भाई था वो थोड़ा तेज था, उसको थोड़ा धक्का मार करके ले गया बाहर, तुमको क्या हुआ तुमको पता है। अब उसको बेचारे को नशा हो गया कुछ, तो वो तो चला गया। अभी बाबा ने क्या किया, साड़ी के नीचे ऐसे हाथ को ऐसे कर लिया, दर्द हुआ होगा। अभी दादी तो वतन में थी और बाबा आया हुआ था, अब इतने सब बच्चों से 3-4 घंटा मिलता रहा, पता भी नहीं चला, हाथ को ऐसे साड़ी खींचने से वादा आ दिया, वो सूझ गया। अच्छा, सुबह दादी यहां से गई तो उनको नींद नहीं आया, वो दर्द अभी शुरू हुआ जब आत्मा आई दादी की जागृति हुई, तो दादी सुबह पट्टा बांध करके यहीं पर ऐसे घूम रही थी। तो हम लोग आए दादी के पास, दादी आज ये क्या हो गया आपको, पट्टा क्यों बांधा है। दादी कहती पता नहीं, शाम को बाबा आया था ना, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत जोर से दर्द होता है, कुछ हुआ है तो हम लोगों को तो पता था, तो हमने कहा दादी आपको मालूम नहीं पड़ा कि एक व्यक्ति आपके ऊपर ऐसे गिर गया। कहती मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत दर्द हुआ बाद में, बाद में जब मैं आई जागृत हुई तो ऐसा दर्द हो रहा था। तो फिर बताया, कहती आप लोगों ने क्यों ना इसको पकड़ा। हमने कहा दादी जब तक पकड़ो तब तक तो गिर चुका था। तो ऐसे ऐसे बाबा के कई खेल यहाँ पर हुए हैं ऐसे, क्योंकि बच्चे तो वैरायटी आते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। तो ऐसे इस भूमि पर, इस स्थान पर ब्रह्मा बाबा की, दादियों की, अव्यक्त रूप में बाबा की बहुत अच्छे वाइब्रेशन है, तपस्या के हैं, स्नेह के हैं, शक्ति के हैं, इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी भाई बहने आते हैं तो उनको योग लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है, मेहनत नहीं लगती, क्योंकि चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है। बाबा ने यहाँ पर इतने साल तक पार्ट प्ले किया साकार में, फिर अव्यक्त में, तो इसलिए हम कहते हैं इस भूमि पर आप सब आए हैं और ऐसे तपस्वी मूर्त बन करके, ऐसे योगी बन करके। त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, तपस्या के लिए मैंने आपको 3 बातें बताई, याद रही ना, याद है, एक बाबा, दूसरा न कोई, दृढ़ता का संकल्प, जो कुछ करना उसमें पक्के रहना, और एक रस स्थिति का आसन। अभी त्याग के लिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, क्योंकि त्याग वास्तव में सुविधाओं साधनों के त्याग के विषय में बाबा हमको प्रेरणा नहीं देता, कहता है इनको यूज करो, ये सब आपके लिए साधन है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं हो जाओ, फंस नहीं जाओ, हैं यूज करो, नहीं है कोई बात नहीं। तो इसलिए इसमें 3 स्मृतियां रहती हैं। एक तो इतना सब बाबा ने हम सबको दिया है, हम निमित्त हैं, निमित्त रूप में कोई विशेषताएं हमको मिली हैं, कोई प्रकार की तन मन धन की शक्ति दी, तो उसको हम यूज करने के लिए निमित्त हैं। निमित्त आत्माओं में निर्माणता नम्रता स्वतः आ जाती है, जहां मैं आता है वहां थोड़ा अहम दिखाई देता है, मैंने किया, मैं करता हूं, कई लोगों में अहम भाव टकराव पैदा कर देता है और दिखाई देता है। एक बहुत शब्द बाबा का बहुत प्यारा शब्द है, जिनमें अहम भाव होता है, जो अहम को नहीं छोड़ पाता है, उसके चेहरे में रोब दिखाई देता है। रोब समझते होंगे, रोब समझ रहे हैं ना, रोब बड़ा चलेगा ऐसे, जैसे कहीं दूसरी दुनिया में रहता है, नीचे नहीं आएगा, बड़ा रोब। और दूसरे जो होते हैं जिनके अंदर रूहानियत होती है, उनके चेहरे पर रुहाब दिखाई देता है। नशा ही, दोनों नशा है, लेकिन एक उल्टा नशा है और एक आत्मिक स्थिति का नशा है, एक देह मान वाला नशा है। तो जितना हम निमित्त भाव में रहते हैं उतना रोब की भाषा, रोब का चलना, रोब की दृष्टि अपने आप त्याग हो जाती, छूट जाती। और इसको अगर किसी ने छोड़ दिया इस ब्राह्मण जीवन में, सरल चित, नम्र चित, मधुर, नेचुरल, उसकी कई धारणाएं अपने आप बन जाएंगी। क्योंकि योग का जो बेस है, आधार है, वो है हमारी निजी धारणाएं। अगर कुछ भी हम गलती करें, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के कोई भी कर्म करें, फिर योग में बैठेंगे कोई योग नहीं लगेगा। तो आवश्यकता है जितनी हमारी धारणाएं अच्छी होती जाती है, हमारा आंतरिक स्वभाव सरल होता जाता है, मधुर होता जाता है, मिलनसार होता जाता है, उतना सहज योगी जीवन बन जाती, योगी जीवन बन जाती, योग लगाना नहीं पड़ता। तो इसलिए किसी भी कर्म क्षेत्र पर कोई भी जवाबदारी की सेवाएं मिलती हैं, डिपार्टमेंट मिलती है, स्थान मिलते हैं, बाबा ने निमित्त रूप में मुझे आत्मा को आगे रखा है, मैं निमित्त हूं। तो निमित्त समझने से नम्रताई, निर्माणताई, निरहंकारिताई, और जैसे मिसाल बताते हैं, दादियां अपने आप को निमित्त समझती हैं, निमित्त हैं, बाबा ने निमित्त रूप में रखा है, निमित्त मात्र कराने वाला वो है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे दादी बार बार कहते हैं अंदर राम बसा हुआ है, अंदर राम बैठा, भक्ति में गाते थे, तो वही सब कुछ करा रहा है, कोई ने कुछ किया नहीं। दादी जी को आपने देखा, प्रकाशमय दादी को सबने अधिकतर देखा होगा। कभी कभी अखबार वाले एक प्रश्न करते थे दादी से, दादी आपके पास इतनी कुमारियां हैं, इतना बड़ा प्रशासन है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको नींद आती है? नींद आती है, आपको टेंशन नहीं होता कभी? तो दादी बड़े मुस्कुरा के कहती थी, अरे नींद भाई क्या बताऊं, मैं तो बिस्तर पर जाती हूँ और तकिया पर ऐसे ऐसे रखती हूँ, सो जाती हूँ। बाबा कराने वाला है, मेरा थोड़ी कुछ है। कभी भी उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, मैं प्रशासिका हूँ, मेरे सब हैं, मेरे जवाबदारी है। कभी भी कर किया सब कुछ, संभाला सब कुछ, लेकिन मैं पन से मुक्त हो गई। बाबा का है, बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे हैं। तो त्याग किस चीज का किया? अहम का त्याग, मैं का त्याग, बड़प्पन का, जो नशे का, उल्टा नशे का, उसका त्याग कर दिया। तो ये त्याग करने से तपस्वी बन गए। तो एक निमित्त भाव, और दूसरा है हमारी वृत्तियां अनासक्त हो जाए। हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, साधन यूज कर रहे हैं, सुविधाएं सब बाबा ने दी है, लेकिन आसक्त होकर के नहीं, फंसे हुए नहीं है, डिटैच होकर के, अनासक्त बन करके। तो वृत्तियों को जितना हम अनासक्त बना लेंगे, वो जैसे और सब बातों का त्याग हो जाएगा। है सब चीजें, कोई चीज छोड़ी नहीं है, लेकिन परिवार भी है, साधन भी है, सुविधाएं भी है, सबके बीच में है, लेकिन आसक्त माना लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं, दोनों बातें उसमें आती हैं। तो जितना हम अनासक्त वृत्ति वाले बन जाएंगे, उतना अन्य सब बातों का स्वतः त्याग हो जाएगा। और तीसरी बात, बाबा ने जो हम सबको दिया है, जो कुछ है, बाबा कहता है ये बाबा की अमानत है, तुमने तो समर्पित किया। भक्ति में भी कहा, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है, लेकिन वहां तो सुना नहीं मूर्ति ने। अभी तो बाबा सुन लिया डायरेक्ट, अभी कहता चालाकी नहीं चलेगी, अभी तुमने जो कहा है वो मेरे को दे दो, अर्पित करो, इंश्योर्ड कर दो, पूरा बाबा के हवाले कर दो। लेकिन बाबा आपका लेके करेगा क्या? वो आपको कहेगा इसको ठीक तरह से संभालो, ये बाबा की अमानत है, अमानत समझ करके उसको संभालना। और अमानत संभालने में सबसे बड़ी विशेषता चाहिए, ट्रस्टीपन की भावना। जितना ईमानदार, ट्रस्टी माना ईमानदार, विश्वास पात्र। ट्रस्टी कभी भी कोई चीज को ये नहीं कह सकता ये मेरी है। आज इतना बड़ा मधुबन है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, हजारों सेवा केंद्र ट्रस्ट के नाम से हैं, कुछ ब्रह्मकुमारीज के हैं, कुछ ट्रस्ट के हैं, व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए। लेकिन ट्रस्टी कभी ये नहीं कहेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है, संभाल रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें कोई खर्चे होते हैं, आमदनी होती, कुछ भी होता है, वो सब करते हैं ट्रस्टी लोग, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते मेरा है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, ये जो भी आपकी प्रवृत्ति है, संगम युग पर बाबा के साथ इतना समीप का रिश्ता रखो कि बाबा ये सब कुछ आपने मुझे दिया है, ये बच्चे हैं, परिवार है, ये तन है, ये मन है, ये धन है, कुछ भी है, ये आपकी देन है, और आपकी देन को मैं एक यथार्थ रीति से प्रयोग में लाऊं, कहीं भी अमानत में ख्यानत न हो, माना वो व्यर्थ खर्च न हो, किसी भी प्रकार की शक्ति को व्यर्थ जाने नहीं देना। दादी जानकी से अगर पूछेंगे ना कि दादी आज इस एज में आप इतनी एनर्जी कैसे अंदर क्रिएट करती हो, इतनी एनर्जी आपके पास कहां से आएगी, तो बड़ा अच्छा उत्तर देती, कहती मैं एनर्जी गंवाती कहां हूं, व्यर्थ नहीं करती हूं तो एनर्जी बचेगी ना, बचती सबके पास है लेकिन गंवाते बहुत है। मम्मा का एक टोटका मैं आपको सुनाता हूं, मम्मा की मुरलियों में आता है कि बच्चे 6 महीना कमाते हैं, खूब अच्छी तरह से कमाई करते हैं, मुरली सुनी, योग किया, ब्रह्मा भोजन खाया, खूब सेवाएं की, खूब दुआएं जमा की, खूब स्टॉक जमा कर लिया, जमा है 6 महीना, लेकिन एक दिन गुस्से में आ गए, एक दिन कोई मूड खराब कर ली, चिड़चिड़े हो गए, कुछ गुस्से में आ गए, तो 1-2 मिनट का क्रोध 6 मास की हुई कमाई को खत्म कर देता। जैसे आज काम विकार के लिए बाबा कहता है कि इतने समय से आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से, और 1 सेकंड आवेग आ गया, आवेश आ गया, ऐसा माहौल मिला, ऐसा वातावरण मिला, और आप अगर फेल हो गए तो आपकी जितनी कमाई है उसी समय वो खत्म हो गई, लकीर लग गई। इसलिए बाबा हम सबका ध्यान खिंचाते हैं, बच्चे कभी भी आवेग आवेश इन विकारों के अधीन होकर के अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करो। जो कमाई हुई है उस कमाई को यथार्थ रीति से यूज करो। कमाई बाबा ने कराई है, बहुत कुछ प्राप्तियां कराई हैं, उस धन को बांटो, बढ़ाओ। ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है, बहुत कुछ बाबा ने दिया है। अब उसकी अमानत ये भी अमानत है, हम उसको भी नशे में नहीं ला सकते, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरा योग बड़ा अच्छा है, कई होते हैं ना, कोई के समझाएंगे कहेंगे मेरे समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, मैंने इसको ज्ञान दिया इसलिए ज्ञान में चल गया, वो भी एक अंदर का उल्टा नशा है। ठीक है, हमने किसी को ज्ञान दिया, कोई को बात सुनाई और ज्ञान में चल पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बार बार किसी को बताना जा करके देखो इसको मैंने ज्ञान दिया, उसमें भी मैं दिखाई देता है, ये बहुत सूक्ष्म है त्याग, उसमें भी जरा भी ना है कि मैंने इसको ज्ञान दिया, मैं इसको लेकर के आया, मैंने इसको ऐसा किया, तो बाबा कहता है ये जो सूक्ष्म है इसका त्याग करो, ये त्याग सबसे बड़ा त्याग, यहां तक भी अंडरलाइन कराते हैं बाबा, त्याग का भी त्याग करो, माना मैंने त्याग किया है उसका त्याग करो। इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंदर लास्ट महावाक्यों में निराकारी, निर्विकारी, फिर निरहंकारी, निर्विकारी बनने में 5 विकार आते हैं, ऐसा नहीं एक काम विकार को जीतने वाला निर्विकारी है, लेकिन कोई भी विकार जो सता रहे हैं उन सब विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले को निर्विकारी का, संपूर्ण निर्विकारी। अहंकार भी उसमें आता है, लेकिन कई बार निर्विकारी हूं मैं, योगी निर्विकारी पवित्र हूं, इसका भी सूक्ष्म अहम आ जाता है, इसलिए उसके बाद ये शब्द यूज किया, निर्विकारी के साथ भी निरहंकारी, अंडरलाइन। तो जितना आत्मा निरहंकारी बन जाए, अहंकार शून्य, आप देखेंगे जो ऐसी आत्माएं हैं इस ब्राह्मण परिवार में, परिभाषा तो बहुत गहरी है, शायद आपको याद हो कुछ दिन पहले 7 दिन का कोर्स त्याग का मुरली में रिवाइज हुआ था, 82 में बाबा ने 7 दिन लगातार एक के बाद एक जो मुरलियां सुनाई थी वो 7 दिन का जैसे कोर्स था त्याग पर, बहुत बड़ा त्याग, जिस त्याग की मुरलियां भी रिवाइज हो चुकी हैं। हम सब बाबा के बच्चे जितना त्याग मूर्त बन करके रहते हैं उतना निरहंकारी और नम्रचित स्वतः बन जाते हैं। जब कोई भी प्रकार का की ऐसी कामनाएं, जो 3 बातें आपको कह रहा था, एक कामनाएं जो आशाएं हैं, आशाओं को कह रहा था, एक आशाएं हैं, दूसरी इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं, कोई चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर तीसरी तमोगुणी तृष्णाएं हैं, तमन्नाएं हैं, तृष्णाएं। और वो तृष्णाएं जो हमारे संकल्पों को विकल्प में बदल देती है, नेगेटिव और विकल्प, बुरे संकल्प, विकारी संकल्पों में आ जाती, तो सूक्ष्म उसकी बहुत गहरी चेकिंग चाहिए। आप सभी भट्टी में आए हैं, यहाँ एकांत मिलती है, एकांत में जाकर के अपनी बहुत सूक्ष्म स्कैनिंग की जा सकती है। देखो अपने आप को, चेक करो कि कोई भी आशाएं ऐसी तो नहीं है जो मुझे भटका रही हूं। अंदर अंदर आशाएं रहती हैं, कई ज्ञान मार्ग में भी बहुत आगे जाने की आशाएं रखते, बाबा कहता हूं अच्छी अच्छी आशाएं रखनी भी चाहिए, लेकिन रीस और रेस नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की रीस आपस में चलती, ईर्ष्या के वश, इसके पास इतना अच्छा सेंटर है मेरे पास भी हो, इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास भी हो, इसके पास ये साधन है मेरे पास, इसके पास इतने स्टूडेंट है मेरे पास भी हो। कई बार कुछ ऐसी आपस में टकराव की स्थितियां इस प्रकार पैदा होती हैं, संगठन में इनका भी त्याग करना पड़ता है। हर आत्मा का अपना भाग्य है और हर आत्मा का अपना पार्ट है। जिस प्रकार से वो पालना दे रही है, जिस प्रकार से उसका पार्ट बना हुआ है, वृद्धि उसी अनुसार उसकी हो रही है। हम इसमें भी रीस और रेस न करें, उसमें भी त्याग वृत्ति हो। जहां सच्चे दिल से बाबा के प्रति समर्पित भाव से सेवाएं की जाती हैं, वहां सफलता अपने आप मिलती है, निकलती ही है। जहां मांगना पड़ रहा है, माना निमित्त आत्माएं वो त्याग वृत्ति से, उस भावना से पालना नहीं दे पा रहे। अगर पालना के संस्कार हो तो जैसे आज दादियों की पालना जो हम सबको मिल रही है, कभी कभी हम विचार करते हैं आज जो यज्ञ की इतनी वृद्धि हुई, इतना विस्तार हुआ, दादियां जो आज पालना दे रही हैं उसका एक फल है। उनकी जो त्याग वृत्ति से उनकी पालना की एक कला है, पालना की कला है। जैसे अजैन की दादी के पास कोई आता है, एक बार की बात सुनाता हूँ प्रैक्टिकल की, मैं बैठा था ऐसे बाजू में, एक बहुत बड़े घराने की विदेश की बहन आई, बहुत पैसे वाली थी, और दादी के पास आई तो दादी ने भाइयों को, बहनों को बोला इसके लिए स्वेटर ले आओ, इसके लिए साल ले आओ, इसके लिए ये ले आओ। और दादी एक के बाद एक, पहले स्लोगन दिया, फिर टोली दिया, फिर कोई एक सेब दिया, फल दिया, और फिर बाद में सौगाते लाना शुरू हो गई, ये दिया वो दिया, ऐसे उसका हाथ ऐसे भरता गया, ऐसे बेचारी ऐसे लेके बैठी थी। दादी ने इतना उसको दिया, इतना दिया, और देने के बाद जब वो बहन उठी, उठ करके बाहर गई तो दादी कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं बोला, दृष्टि दी, बहुत प्यार दिया, पालना तो दे दी। अब बाहर वो जा करके कहती है मुझे लिफाफा चाहिए, और फटाफट लिफाफा मांगा बाहर जा करके, और अच्छी तरह से उसमें डाल के भर करके दादी के पास दे गई, रख के गई। तो जब वो चली गई तो दादी मुझे कहती देखो कितना आया, ऐसे देखने ऐसे दिखाया लिफाफा, कहती देख ये बहन जो है ना कभी भी यज्ञ में कभी कुछ नहीं करती। पालना लेती रही है लेकिन कभी नहीं किया, आज दादी ने सोचा आज इसे कराना ही है। लेकिन दाता बन करके देना पड़ता है, पहले दो फिर आता है, ये एक विधि है। हम किसी से अपेक्षाएं रखें, ये दे जाए, ये दे, ये दे, ये दे, लेकिन दादियों ने ये भावना नहीं रखी है देगी या नहीं देगी, वो नहीं सोचा, दो इसको सब कुछ। और जब आप देव दे इतना दोगे उसको शर्म आएगी, अरे बाबा के घर में हमको इतना मिल रहा है, इतना प्यार से हमको, इतनी खातरी हो रही है, खिला पिला रहे हैं, सब प्रकार की चीजें सौगातें मिल रही हैं, साधन मिल रहे हैं, सुविधाएं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, मेरे पर बोझ चढ़ जाएगा। अगर थोड़ी भी समझ व्यक्ति के पास होगी तो क्या करेगा, वो अपने पर बोझ नहीं चढ़ाएगा, कहेगा इतना सब दे रहे हैं मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। तो दादियों ने ये एक विधि अपनाई है शुरू से लेकर के, हम बड़ी दादी को देखते थे, प्रकाशमय दादी को, उसी प्रकार से भावना, ये खिलाना है, ये करना है, इनको ये पिकनिक कराओ, इनको ये कराओ, इनको ये कराओ। तो सबसे जो पालना देकर के कराया, सहयोग लिया कराया, नहीं तो इतना बड़ा यज्ञ बनना, ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, फिर शांति वन बना, फिर मनमोहिनी वन बन गया, मांग करके थोड़ी मांग के बनवाया है, किसी से कहा थोड़ी तू इतना करो। लेकिन जो आए हैं जैसे भी हैं उनकी अच्छी खातरी हुई है, पालना हुई है, स्नेह मिला है, सम्मान मिला है, तो अपने आप रिटर्न कर रहे हैं। तो बाबा ने हम सब बच्चों को जितने भी हैं दाता बनाया है अपने समान, मांगता नहीं। दूसरे लोगों की संस्थाओं में दूसरे स्थानों पर आप जाएंगे उनकी पहले जेब पर नजर होगी, कुछ दें, कुछ डालें, कुछ करें, और अगर आप नहीं दोगे तो जाने के बाद आपको गालियां मिलेंगी, कुछ न कुछ और उल्टा सीधा श्राप मिल जाएगा। लेकिन बाबा की ये सिस्टम कहें, सिस्टम बनाई बाबा ने, बच्चे देने के संस्कार डालो। और शुरू से ही हम देख रहे हैं कि दातापन के संस्कारों से यज्ञ भरपूर होता गया। हम सभी भी जो कुछ है इन शक्तियों को बढ़ाने की विधि दान करें, दें। अगर जितना दान देंगे, बाबा कहता दान दो तो वरदान मिलेगा, वरदान ऐसे नहीं मिलेगा, दान दोगे तो मिलेगा। आप सोचते हो मेरी मनसा बड़ी शुद्ध हो जाए, बड़ी एकाग्र हो जाए, मैं मनसा खूब सेवा करूं, बड़े अच्छे अच्छे संकल्प चले, मन हिलना डुलना बंद हो जाए, चंचलता बंद हो जाए, कैसे होगी? कुछ दान करो मनसा से। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, जो चीज आप नहीं खा सकते उसका दान करो। शुगर वालों कहें तुम चीनी दान कम किया होगा इसलिए शुगर नहीं खा सकते हो, तुम इसका दान करो तो आगे जन्म में खाना को मिल जाएगी। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, मान लो आज मन को शांत, एकाग्र, शक्तिशाली हम बनाना चाहते हैं तो कुछ समय शुभ भावनाओं से भरपूर होकर के मनसा से शक्ति का दान करो, शुभ भावनाओं से। क्योंकि दान करने की विधि है बहुत, मनसा से दान करने की विधि तो शुभ भावना ही है ना। अगर किसी के प्रति हमारी कोई गलत भावनाएं हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, व्यर्थ हैं, या हम ये सोच लेते हैं ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, फिर हम क्या मनसा सेवा करेंगे? आप मनसा सेवा भी कर रहे हो, कहते इसके लिए मैं योग कर रही हूं लेकिन मैं समझती हूं बदलेगा नहीं, क्या होगा? आपकी जो धरनी है वो बीज बोने की वो गलत है, इसलिए वो बीज सफल नहीं होगा। बहुत शुभ भावना है, जरूर बदलेगा, हट्टी एक ही है, जाएगा कहां? आज नहीं तो कल, इसको बाबा का बनना ही है, बाबा से अपना अधिकार लेना ही। इतनी शुभ भावना से भरपूर होकर के फिर मनसा से उसके प्रति शुभ भावना का दान दो। अगर दान दोगे तो मनसा वरदानी बन जाएगी, बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। फिर एक सेकेंड में बाबा कहता ना मेरे पास आ जाओ, साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन। क्योंकि मन ही एक ऐसा हमारे पास साधन है जिसको हम कहीं पर भी लेकर के अच्छे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करने का और कोई दूसरा माध्यम नहीं है, अच्छे और बुरे अनुभव कराने वाला ये संकल्प है, मन ही है। आप किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर आपको कोई ने भय डाल दिया हो, किस स्थान पर भूत रहता है, इस स्थान पर ऐसा है, वहां जाने वालों को ये होता है, वो होता है, आपके मन में पड़ा हुआ है वो सब, उस स्थान पर जाते हुए आपको स्मृति आती है, वहां है कुछ नहीं लेकिन वो स्मृति आपको भय का वातावरण क्रिएट कर देती है, आपको लगने लगता है यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, और डर जाते हैं, फिर नहीं होने वाली छाया भूत बन करके आ जाती है। इसलिए ध्यान देना, कोई भी ऐसे साधारण नेगेटिव संकल्प करके हम अपने लिए कोई ऐसी खाई न खड़ी कर लें जो हमारे को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए बाबा कहता है अपने संकल्पों को बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव, अच्छे से अच्छा बनाओ, और जितने व्यर्थ हो नेगेटिव संकल्प हो उनका त्याग करो। मान लो आज कोई नया ज्ञान में चलता है, मैं एक मिसाल बताता हूं, नया नया आप ज्ञान में चले हैं, ज्ञान में चलने के बाद आपकी घर में जो पूजा की कोठी थी, पूजा पाठ करते थे, कुछ कर्मकांड करते थे, कुछ मंदिरों में जाते थे, कुछ देवियों की चढ़ावा चढ़ाते थे, कुछ गुरुओं का दान करते थे, और ज्ञान में चलते चलते एक दो साल में जब पता चलता है ये सब व्यर्थ है, इस नहीं करना चाहिए, तो छूटने लगता है। और जब छूटने लगता है तो बाजू वाले, घर वाले, पड़ोसी सब कहते हैं देखना गुरु जी नाराज हो जाएंगे, देवी जी नाराज हो जाएंगी, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उस बात को अगर आपने गहराई से ले लिया तो आपका जो नेगेटिव संकल्प है नुकसान न होने वाला भी नुकसान कर देगा। वैसे कुछ नहीं होगा, अगर आप पक्के हैं मेरा कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको समझ लिया, जैसे आज बाबा आज की मुरली में कह रहे थे ना, किसी ने पूछा दिवाली के दिन में बाबा लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सब कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी की पूजा नहीं करें धन नहीं आएगा, और करना चाहिए या नहीं करना, बाबा से किसी ने प्रश्न किया तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बच्चे दिखावा साक्षी होकर के कर लेना चाहिए। अगर बाबा इस बात को मना कर दे और उस बेटी के घर उसके मन में बात घुस गई कि मैं अगर पूजा नहीं करूंगी लक्ष्मी नहीं आएगी धन नहीं आएगा, तो उसके जो नेगेटिव संकल्प है हो सकता है घर में धन खत्म हो जाए, ना है धन कोई लक्ष्मी उसको नहीं देने वाली उस समय, लेकिन उसकी भावनाएं जो हैं उसकी जो वृत्तियां हैं वो हो सकता है नुकसान पहुंचा दे। इसलिए बाबा तो उसको बड़े सरलता, हाँ बच्ची कर लो साक्षी होकर के, क्या करने की जरूरत, हम जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में जो नेगेटिव बातें चली गई हैं और उनके ऊपर हमारा बहुत विश्वास भी है तो कई बार न होने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए संकल्पों की क्वालिटी को बहुत सुधारना, फिर कोई कदम उठाना। कोई भी कोई बात कहता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपका निश्चय क्या है कि मेरे साथ कौन है। अगर ये संपूर्ण विश्वास किसी को हो गया कि मेरे साथ स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरा है, उसके आगे कोई की कुछ नहीं चल सकती, जब तक ये संपूर्ण निश्चय नहीं है तब तक ये कोई चीज छोड़ोगे तो जरूर नुकसान हो जाएगा। इसलिए निश्चय बुद्धि पहले बनो, साधारण और कमजोर संकल्पों का अगर त्याग कर सकते हो पहले नेगेटिव चीज का त्याग करो, व्यर्थ चीजों का त्याग करो, नहीं तो वो आपके आगे आपके मन को कमजोर बनाते जाएंगे। तो मनसा शक्तिशाली बनाने के लिए शुभ भावनाएं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प, और अगर यथार्थ संकल्प हैं तो उस संकल्प की सिद्धियां अवश्य मिलती हैं। बाबा नहीं सिद्धि देता है, विधि बताता है। ऐसे नहीं बाबा कोई हमारे ऊपर मेहरबानी कर दिया, लेकिन बाबा ने हमें विधि बता करके वो जरूर मेहरबानी की है, विधि बताई है, और विधि को अगर हम ठीक अपना रहे हैं तो सफलता मिल रही है, सिद्धियां मिल रही हैं। विधि ठीक नहीं है फिर बोलो बाबा तो कुछ मदद करता ही नहीं है, बाबा तो सुनता ही नहीं है, बाबा तो निराकार है, उसको तो कान है ही नहीं, ऐसे ऐसे कह करके फिर ढीले हो जाते, फिर कोई दूसरा आता है तो उस पर विश्वास कर लेते, ये तो बहुत पहुंचा हुआ है। ध्यान देना, वाचा को अगर वरदानी बनाना है, एक एक बोल सिद्ध होने लगे क्या करना पड़ेगा, इससे ज्ञान दान करो, और वाचा पर हमारा इतना ध्यान हो कि वही बोल निकले जो किसी के कल्याण के लिए हैं, किसी को आगे बढ़ाने के लिए। वाचा में अगर नम्रता और सम्मान की भावना भरी हुई है, सम्मान देने वाले बोल निकलते हैं, आवश्यक बोल निकलते हैं, तो ये वाणी जो है वो सिद्ध होने लगेगी, जो बोलोगे हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही इधर उधर की बातें जो आया बोल रहे हैं जब आया बोल रहे हैं, तो व्यर्थ बोल हमारी एनर्जी को भी नष्ट करते, हमारी शक्तियों को भी गंवाते हैं, और साथ साथ कई बार संबंधों में टकराव पैदा कर देते हैं, कई आत्माओं को बोल से श्राप लग जाता है। इस बोल पर ब्राह्मण आत्माओं को बहुत ध्यान देना चाहिए, इसमें जो नेगेटिविटी उनका त्याग करो, चेक करते जाओ कि क्या अभी तक मेरे बोल में वो मधुरता वो नम्रता वो सम्मान वो प्यार है, या अभी भी बोल जो आया बोल देते जिसको आता, इसकी चेकिंग चाहिए। और कर्म जो हों उनसे लोगों को गुणों का दान होता रहे, लोग सीखें कि ये जो कर्म कर रहा है, जैसे हम शुरू से दादी को जानकी दादी को बाबा कहते थे ये बच्ची है गुणों का दान करती है, आज तक भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कहीं भी जाओ बहने क्या सीखती हैं कि दादी इस उम्र के अंदर इतनी एक्टिव होकर के पार्ट बजा रही है, हम लोग थोड़ी बीमारी होती थोड़ा कुछ होता सो जाते, तकलीफ हो गई ये हो गया उनको कुछ पता ही नहीं चलता, चलो चलो चलो। तो ये जो है गुणों का दान कर्म से हो रहा है, सिखा करके बोल करके नहीं कर रहे हैं, उनका जो उमंग है उत्साह है बाबा से प्यार है लगन है वो देख करके ही, कहें या न कहें बोले या न बोले सबके दिल में वो छाप पड़ जाती है, प्रैक्टिकल है, कर्मों से गुणों का दान हो रहा है। तो हम सभी भी अगर अपने कर्मों से गुणों का दान करते रहें तो कर्म योगी बन जाएंगे, और ये कर्म ही हमें डबल लाइट बना देंगे, फरिश्ता बना देंगे। कर्म छोड़ करके फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म करते हुए हम बोझ से हल्के हो जाएंगे तो फरिश्ता स्थिति बन जाएगी। इसलिए जितना हम दानी बने, मनसा से शक्तियों का दान करें, वाचा से ज्ञान का दान करें, कर्मणा से गुणों का दान करें, तो हम दानी वरदानी आत्माएं स्वतः है, हर आत्मा को देखेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, चलेंगे। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चों के चलने से, उठने से, बैठने से, हर कर्म से सेवा हो। त्याग, तपस्या और सेवा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कोई कहे मेरे को तपस्या बड़ी अच्छी लगी, योग बड़ा अच्छा लगता, मुझे सेवा एवा से कोई लेना देना नहीं, सेवा में तो बड़े टकराव होते हैं, जहां जाओ वहां तेरा मेरा हो जाता, ये हो जाता। और बाबा कहता है बच्चे इस सब्जेक्ट में भी पीछे नहीं रहना, चारों सब्जेक्ट में नंबर चाहिए, एक में अगर फेल हो गए तो फेल हो जाओगे। इसलिए सेवा भी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, और सेवा की सब्जेक्ट में पास होने के लिए त्याग और तपस्या की तो आधार है, वो तो चाहिए ही, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको तीन बातें बताता हूं। क्योंकि सेवा माना सुख देना और सुख लेना। सेवा शब्द जो है ना, सर्वेंट नहीं, नौकर नहीं है, हम सेवाधारी हैं, सेवा करने के लिए। और अगर उस सेवा में कोई आत्मा डिस्टर्ब होती है, दुख फील करती है, नाराज होती है, हम एक की सेवा करते हैं और पांच लोग नाराज हो रहे हैं, तो वास्तव में हमारा माइनस में जा रहा है, वो सेवा नहीं है। इस बात को अंडरलाइन करना, सेवा माना सुख देना और सुख लेना। हम भी सुखी रहे और हमारा सारा परिवार सुखी रहे। कोई ये न कहे देखो इसने यहां पर आकर के कब्जा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ये सेवा नहीं है। तो सेवाधारी जो सेवा कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुनाने की सेवा है, बाबा का परिचय देने की सेवा है, उस सेवा में कहीं हदों की मात्रा न हो। हदों में हम अपनी बुद्धि को न बांधे। जो बेहद में बुद्धि रखते हैं वो सच्चे सेवाधारी है, बेहद में कोई हद नहीं। सबके बाबा के सब घर अपने घर हैं, सारा परिवार अपना है, तो एक हदे न हो। दूसरा, जितना हमारा रहम भाव है, दया भाव है, उतना ही मेरे अंदर से आएगा कि इसको कुछ दें। लोग सेवा जो करते हैं, समाज सेवा जो कर रहे हैं, उनके अंदर दया भाव है, रहम भाव है, लेकिन उस समाज सेवा में जो कमी आ गई, जो बाबा भी पूरी कर रहा है कि बच्चे बहुत अच्छी भावना से लोगों को मदद की जाती है, लेकिन कई बार उस धन का दुरुपयोग होता है। और वो प्रयोग करने वाला, अगर आपके सहयोग से उसने प्रयोग करके कोई गलत कर्म कर लिया, तो उसका हिस्सा आपके खाते में बन जाएगा, जमा हो जाएगा। ये भी कर्मों की बहुत गहरी फिलॉसफी बाबा ने सुनाई है। हम लोग क्यों नहीं इधर उधर दान करते, क्यों नहीं मां मांगने वालों को पैसा दे सकते, देते हैं, कई लोग होते हैं भाई मांग रहा है, खड़ा है, दे दो पांच रुपया, दस रुपया। आजकल पांच रुपया दो तो भी गाली देगा, क्या दे रहे हो है? लेकिन बाबा ने इस स्थूल धन के दान के लिए मना किया है। लेकिन कई स्थानों पर आप जाते हैं, मान लो आज किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए आप गए हैं, भावना से गए हैं, वहां के पुजारियों की फीस होती है। आपको शायद मालूम हो, जो पुजारी जितना घंटा रहता है उतना समय जो चढ़ावा चढ़ता है वो उसी का होता है। मैंने एक जगह गया था, मैंने देखा, तो उसने बताया कि जितना, जब तक मैं आठ घंटा छह घंटा यहां पर पूजा में हूं, तब तक जितना चढ़ावा चढ़े, जो भंडारी में डोल जा जाएंगे वो तो गवर्नमेंट का है, माना ट्रस्ट का है, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ेगा, जो यहां पर हमको हाथ में देंगे या मूर्ति के आगे रखेंगे, वो मेरा हो जाएगा, भक्तों का हो जाएगा। और उस मंदिर में हम जा करके और खाली हाथ से प्रसाद ले लें या हाथ जोड़ के चले आए, तो वो जो पुजारी है उसके बहुत नेगेटिव संकल्प हमारे पर चलते हैं। मूर्ति नाराज नहीं होती, लेकिन वो नाराज हो जाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए। दादी जी ने हमें इस बात सिखाई कि जब कभी ऐसे मंदिर में जाओ जहां पूजा पाठ हो रहा है और जा रहे हो आप, तो अपने जेब में कुछ भी है पांच दस रुपया डालो जरूर, खाली हाथ नहीं जाओ, लेके जाओ। ये सिखाती थी दादी। लेकिन ऐसे कोई भीख मांग रहे हैं, आज करोड़पति बन गए भिखारी लोग, हम उनको दे रहे हैं, वो शराब पी जा करके पी रहे हैं, वो गलत धंधे में लग रहे हैं, उससे अलग बिजनेस कर रहे हैं, उल्टा सीधा दो नंबर के धंधे हो रहे हैं, वो हिसाब बन जाता है। इसलिए ये कर्मों की गति है, इनको समझना है, कहां हमें धन देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए, कहां लगाना चाहिए। सेवा भाव अच्छा है, दातापन का भाव है, देने का दया भाव है, रहम भाव, ये सब गुण है सेवाधारी के। और ये सेवाधारी के गुण जिसमें जितने हैं वो अच्छी सेवा करता है, लेकिन कई बार ये सेवाएं भी हमारे हिसाब किताब को बना देती हैं। तो इसलिए बहुत गहराई से ध्यान देना कि ऐसी कोई सेवा न की जाए जिससे हमारा कोई नया हिसाब किताब क्रिएट हो जाए। सेवा करो, दिल से करो, सच्चे मन से करो, क्योंकि सेवा के बिना प्रजा नहीं बनेगी, सेवा के बिना आपको राजधानी का ऊंच पद नहीं मिलेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी। तन से करो, मन से करो, धन से करो। और एक बार की बात और रमणीक सुना करके पूरा करूंगा, फिर योग करेंगे हम 15 मिनट। एक बार हमारे मधुबन में, शायद कोई कोई ने सुना हो, दादी जी की एक बात सुनाता हूं, सेवा के लिए कितनी अच्छी एक मुरली बाबा की चली। यहां पर होली के दिनों में कोयला आया था, कोयला, और कोयला यहां पर बहुत यूज होता था। अभी तो सब स्टीम और गैस और बहुत सारी चीजें हो गई, लकड़ी और कोयले के सिवा और कुछ नहीं था यहाँ। यही दो चीजें थी जो हम लोगों ने शुरू में, पानी गर्म करना, रोटियां बनाना, खाना बनाना, तो कोयले का ही सब प्रयोग होता था। तो एक बार कोयला पूरा ट्रेन, धनबाद से ट्रेन आती थी हमारे पास, अभी झारखंड में है, तो वहां से पूरी ट्रेन कोयले की भर के आई। और ऐसे दिनों में आई जब यहां पर राजस्थान में होली बहुत मनाते, सारे मजदूर छुट्टी पर चले गए, मजदूर नहीं थे, और ट्रक एक था हमारे पास, केवल एक ट्रक था। और ट्रेन तो बहुत बड़ी, सारा पूरा ट्रेन फुल थी। तो जब ट्रेन आ गई तो नोटिस आती है रेलवे से कि 3 दिन के अंदर ये आपको पूरी ट्रेन खाली करनी है, और अगर नहीं खाली करेंगे तो इतने 1000 पेनल्टी पड़ेगी। तो दादी जी को उस समय थोड़ा सा जी के बहुत ध्यान रहता था, यज्ञ का एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो सवेरे सवेरे क्लास में, ऐसे मुरली की क्लास में आई और बड़े उमंग उत्साह से कहानी सुनाना शुरू की। कहती एक पांडवों को आज एक कहानी सुनाती हूं। और क्या कहानी सुनाई? बोला एक हनुमान लंका में, जब लक्ष्मण को वाण लग गया और वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए, तो हनुमान के पास एक शक्ति थी कि वो उड़ सकता था, और वहां से उसको उड़ाया गया और कहा गया हिमालय पर संजीवनी बूटी है, और वहां से रातों रात आपको लानी पड़ेगी, अगर सवेरा हो गया, दिन निकल गया, तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं रहेंगे। कहानी दादी ने रमणीकता से सुनाई, और सुनाने के बाद सुनाती है जब हनुमान जी वहां से उड़े, हिमालय पहुंचे, और हिमालय में देखा कि ये संजीवनी तो सब एक जैसी है, पता ही नहीं चलता संजीवनी कौन सी है, तो उन्होंने पहाड़ को यहां से उठा लिया, और पहाड़ को उठाया, हाथ पर रखा, और उड़े वहां से, और रातों रात लंका पहुंच गया। कितना भी विघ्न आए, कितनी रुकावटें। अब ऐसी ऐसी कहानी सुना के बोला, वो एक पवन पूत, एक हनुमान इतना बड़ा कार्य किया, एक पहाड़ को उठा के ले आया, और हमारे पास इतने सारे पहाड़, पांडव पहाड़, हनुमान बैठे हैं, पवन पूत बैठे हैं, एक छोटी ट्रेन आई हुई है कोयले की, क्या बड़ी बात है। उमंग भर दिया और कहा चलो चलो हम सब चलते हैं, अभी अभी कोयला खाली कर देंगे। तो जो उमंग उत्साह में आ गए भाई लोग, वो दादी के कहने से चल दिए, ट्रक लिया, अपना ट्रक था, ले आए खोले, सारी दिन में सारा दिन चढ़ गए सब पांडव, महावीर, हनुमान, और फटाफट ट्रेन खाली किया, और खाली करके रातों रात कोयला यहां आ गया, आ गया। अब दादी जी ने देखा भाइयों की शकल, सब काले काले हैं, कपड़े काले, मुंह काले, हाथ काले, और बेचारे ऐसे ऐसे जब आए, तो दादी कहती अच्छा अच्छा सब जाओ, पहले अच्छी तरह से नहा धो करके साफ स्वच्छ होके अच्छे कपड़े पहन के आओ, फिर दादी मिलेगी। उधर गुलजार दादी को बोलती है, दादी बाबा को बोलो ना, इतना मेहनत हमारे पांडवों ने किया है, इनके साथ पिकनिक करे, बाबा करे। दादी को ये बहुत रहता था कि इन्होंने इतनी सेवा की, इनको रिटर्न तो जरूर देना चाहिए। तो दादी तो बड़ी, आप समझते हो, गुलजार दादी को देखा है कितनी नम्र चीज, जो दादी जी कहें, जो दादी जी कहें। और दादी ने तो बाबा को बांधा हुआ था प्यार में, तो बाबा कभी ना नहीं कर सकता, दादी अगर कह दे बाबा को आना है तो बाबा आ जाएगा। तो दादी गई बाबा के पास, सब भाइयों को बुलाया, दादी ने आओ सभी, बैठा दिया ऐसे ही। बाबा आ गए महफिल में पिकनिक करने बच्चों के साथ। लेकिन बाबा जब आए तो बाबा ने एक मुरली सुनाई, वो सुनाता हूं मैं। बाबा ने कहा मेरे बच्चों ने, जब मेरी बच्चे, बाबा ने कहा बच्ची ने, दादी की तरफ इशारा किया, बच्ची ने सवेरे जब बच्चों में उमंग उत्साह भर रही थी तो मैंने, बाबा ने तीन प्रकार के बच्चे देखे, तीन प्रकार के बच्चे। एक बच्चे वो थे जो दादी के उमंग उत्साह के साथ उमंग में आ गए, दादी जी कह रही हैं चलो हम सब चलते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे वो थे जो सोच रहे थे कि कोयला मेरे बस का तो नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सांस चलती है फूलती है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूं। बाबा ने कहा वो भी ठीक। लेकिन मेरे तीसरे प्रकार के जो बच्चे थे जो कर भी सकते थे लेकिन दूसरों को कहते थे पता नहीं दादी को क्या होता बीच बीच में, कितनी पेनल्टी लग जाएगी, ये हमारा काम थोड़ी है, छोड़ो ना। बाबा ने कहा मैंने तीन प्रकार के बच्चे देखे लेकिन मैं तीसरे प्रकार के बच्चों के लिए श्रीमत देता हूं, राय देता हूं। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बच्चे अगर कोई तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह नहीं है और किसी दूसरे को आप दो आना भी उमंग बढ़ा दो तो कम से कम आपके हिस्से में वो जमा हो जाएगा। अगर तुमने उसके उमंग को, जाने वाला है उमंग है उसको, और तुमने उसके उमंग को डाउन किया तो आपके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। सेवा की विधि सुनो। अगर मान लो आज नागपुर में इतना बड़ा भवन बन रहा है, बाबा का इतना सुंदर भवन बन रहा है, कई गुप्त बाबा के बच्चे कर रहे हैं तब तो बन रहा है, कई सोचेंगे क्या जरूरत थी इतना बड़ा भवन निकलने की, क्या जरूरत थी सब करने की, कौन इतनी सेवा होगी। एक कर रहा है उसका भाग्य गुप्त रीति से बन रहा है, दूसरा कहता है चलो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सब भावनाएं हैं, भले बन जाए अच्छा बन जाए, बाबा की सेवा होगी, वो भी ठीक है। और तीसरा जो है वो अगर किसी को रुकावट डाल रहा है, अरे छोड़ो ना क्या जरूरत है, इतने सब करने वाले इनके पास आ गए हैं, तो किसका बोझ बनेगा। अगर मान लो मेरे पास नहीं भी है और मैं उसको दूसरे को कहता हूं, अरे भाई बाबा का कार्य है, भगवान कुछ न कुछ गुप्त रीति से यहां से कराना चाहता है, कुछ उसकी प्रेरणा होगी गुप्त होगा, हम सबको करना चाहिए, हम भले नहीं कर सकते लेकिन दूसरों को अगर हमने दो आना चार आना बढ़ा दिया और उसने सफल कर लिया तो आपके हिस्से में कुछ तो जमा हो जाएगा। ये सेवा का बहुत सुंदर रूप है। कोई कहे मेरे पास कुछ नहीं है, बाबा कहता कोई बात नहीं बच्चे, अपने परिवार को चलाओ, सफल करो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन ध्यान रखना ये बीज बोने का समय है। और अगर इस समय कह दिया कुछ नहीं है और भगवान ऊपर से देख कर कहे तथास्तु तो जो है वो भी काम हो जाए। इसलिए ध्यान देना भाई, एक मंदिर में मैं गया था, मैंने कभी सत्यनारायण स्वामी की कथा नहीं सुनी थी, तो उस मंदिर का नाम था अन्नावरम में एक मंदिर है, सत्यनारायण स्वामी का मंदिर आंध्रा में है, बहुत सुंदर मंदिर है। वैसे तो मैं मंदिर नहीं जाता लेकिन वहां भट्टी रखी थी, एक 1,500 भाई बहने वहीं धर्मशाला में ठहरे थे मंदिर के अंदर ही। तो उन बहनों ने और उसके जो ट्रस्टी थे वो बड़े भावना वाले थे, फ्री देते हैं हर साल देते हैं स्थान वो भट्टी के लिए। तो आया मेरे पास, कहता आप माउंट आबू से आए भाई साहब, मंदिर में चलेंगे? जरूर चलेंगे, उसकी भावना है हम जरूर चलेंगे। तो सवेरे 5:30 बजे जब मंदिर में पहले पहले दरवाजा खुलता है तो उस समय मुझे आया लेने के लिए, मेरे को ले गया, मंदिर दिखाया और मुझे मंदिर देख के बड़ा प्यार खुशी हुई। क्या खुशी हुई कि ड्रेस तो देवताओं की थी और शकल हमारे ब्रह्मा बाबा की थी, मुझे सफेद सफेद दी। वैसे मूर्ति में देवताओं की मूर्ति मुझे नहीं होती, वो सफेद मुझे थी और बढ़िया सा मूर्ति चमक रही थी और ड्रेस देवता ही थी और उसका नाम था सत्यनारायण स्वामी, मंदिर का भी नाम यही था। तो जरा सारा देखा, उसमें सब मेरे से पूछा गोत्र ये फलाना, मैं तो कुछ जानता नहीं था, एक बहन थी उत्तर देती गई उसको जो पूछ रहा था। फिर मैंने बोला सत्यनारायण स्वामी की कथा क्या होती है, आप सुनाएंगे मुझे सत्यनारायण की कथा? तो नीचे 15-20 युगल कथा सुन रहे थे, नए नए शादी करके आए होंगे, वहां कथा चल रही थी। तो खड़ा हो गया मैं, वो कहा भाषा उनकी अलग थी लेकिन उसने बताया ट्रांसलेशन करके कि सत्यनारायण स्वामी जो थे एक बार एक ब्राह्मण रूप धारण करके एक बड़ा बिजनेसमैन कुछ कमा के लाया था, जवाहरात हीरे भरे हुए थे नाव में और वो आ रहा था तो ब्राह्मण रूप में गए भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए कितनी सच्चाई इसकी, तो उससे उसे पूछ दिया इसके अंदर क्या है। उसने कहा इसके अंदर तो लत्ता पत्ता है, मिट्टी धूल है। तो उसने कह दिया तथास्तु, और तथास्तु कह दिया तो जितने हीरे जवाहरात थे सब मिट्टी में बदल गए, लत्ता पत्ता बन गए। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। कभी भी भगवान के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस बूढ़े ब्राह्मण को उसने पहचाना नहीं। तो उस कहानी से मैं अपने क्लास में आकर के बताया कि ये बूढ़ा ब्राह्मण जो बैठा है ना, यही सत्यनारायण स्वामी है और इसी के मंदिर में आप बैठे हो। कभी भी भूल चूक से कभी इसके आगे ये नहीं कह देना मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो अगर इसने कह दिया तथास्तु तो आप समझ लेना क्या होगा। जो आपके पास है जितना है सच्चे दिल से, बाबा मेरे पास, बाबा कहता ना अगर तेरे पास 1000 नहीं है 5 रुपया है, बाबा मेरे पास इतना ही है और उसमें से मैं इतना सफल कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। बाबा उसको भी कहेगा नहीं सफल करो, ये भी नहीं कहेगा करो, लेकिन जो है जितना है सच्चे दिल से बाबा के आगे अर्पित करो, उसको लगाओ, उसे सेवा भावना से करो, ये सेवा है। और दूसरे के अगर खुद के पास कम है और दूसरे को आप उमंग उत्साह में ला करके उसको सफल करा देते हो तो भी आपके खाते में कुछ तो जमा हो जाएगा। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे सेवाधारी त्याग और तपस्या के साथ इस सब्जेक्ट को भी जरूर ध्यान पर रखें। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट बाबा ने दी है और इसी से ही ये दुनिया को बदल रहे हैं। हम सब एक मनसा से सेवा कर रहे हैं, एक वाचा से कर रहे हैं, एक गुणों से कर रहे हैं, कर्मों से कर रहे हैं, और साथ साथ जो शक्ति जो विशेषताएं हम सबको बाबा ने दी है, तन मन धन समय श्वास विशेषता जो कुछ है वो हमारी सेवा में संभालो। तो ऐसे त्याग तपस्या और सेवा का बैलेंस रख करके हम सब क्या करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करके रहेंगे, ऐसा है ना, सब करेंगे ना। हाँ, तो सभी बाबा की सेवा में मददगार बन करके खूब प्यार से तपस्या जरूर करना। तपस्या केवल बैठ करके करने की जरूरत नहीं है। कई लोग समझते हैं तपस्या माना मुझे बैठना ही है, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। 2 घंटा 3 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करो। इस बारी जब ये दादी जी का स्मृति दिवस शुरू हुआ ना अगस्त महीना, तो मुझे बैठे बैठे संकल्प आते रहते हैं कुछ न कुछ, बाबा दादियां टच करती रहती हैं। तो ऐसे बैठा था, हमने कहा 11वां दादी का स्मृति दिवस है और मैं अपने मधुबन के ग्रुप को 11 घंटे योग के लिए कहता हूं कि सभी कम से कम 26 तारीख तक, राखी तक, पहली तारीख से 26 तारीख तक 11 घंटे योग करें। तो जब मैंने बात क्लास में रखी तो कुछ ने मेरे से प्रश्न किए, भाई साहब 11 घंटे, बाबा तो 8 घंटे कहता, आपने 3 घंटा और बढ़ा दिया। फिर मैंने एक चार्ट 5 पॉइंट का दिया, हंस वृत्ति, हंस दृष्टि, हंस बोल, इसके ऊपर एक चार्ट दिया 5 पॉइंट का। हमने कहा ये रखेंगे तो 12 घंटा क्या 24 घंटा योग हो जाएगा। जब हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति संकल्प बोल सब शुद्ध होते जाएंगे तो योग तो नेचुरल हो जाएगा ना। तो जब ये बात कही हमने कहा 3 घंटा आप सब बैठ करके योग करने का अभ्यास करना, 3 घंटा केवल। अमृत वेले 1 घंटा 1.5 घंटा करो, शाम के समय 1.5 घंटा करो, दिन में भले आप कर्म करो, बीच बीच में 3 मिनट 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करो, लेकिन 8 घंटा कर्म योगी बन करके दिखाओ, कर्म योगी बन करके। बाबा की मुरली सुन रहे हैं उसी भावना से, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, उनके महावाक्य मैं सुन रहा हूं, दादी ये पढ़ा रही, ये देख रहा, वो नहीं देखना। अगर उस भावना से मुरली सुनोगे तो भी आपका योग में गिनती होगा। अगर आप बड़े अच्छे सम्मान में रह करके कोई कर्म करोगे, जाकर के भोजन बनाओगे खिलाओगे या कोई भी सेवा करोगे, लेकिन बहुत ऊंचे नशे और सम्मान में रह करके करोगे तो भी आपका योग में गिनती हो जाएगा। ऐसे करके 11 घंटा उनका चार्ट मैंने बताया, ऐसे करो। अभी मैं कल ही क्लास करा के 26 तारीख परसों थी, मैं मिला सबसे, सबका चार्ट जमा कराया, देखा कोई ने 80% लिया, कोई ने 90 लिया, कोई ने उसमें 6 घंटा, कोई ने 7 घंटा, कोई ने 8 घंटा, मतलब पुरुषार्थ किया, रेस किया, अच्छी बात है। हम सभी एक ध्यान रखें, प्रवृत्ति में रह रहे हो, व्यवहारिक जीवन है, बहुत सारे कर्म होते हैं, सब करो, लेकिन अपनी उन्नति के लिए कुछ समय तपस्या जरूर करनी है, बैठ करके सवेरे 1 घंटा अच्छा योग, जिसके अंदर केवल एक बाबा दूसरा न कोई, जो बताया ना तपस्या क्या है। और आसन जो है वो है भ्रकुटी, ये हमारा आसन है। तपस्या के लिए इस आसन पर चमकते हुए स्वरूप में बैठ जाओ और बैठ करके ये अनुभव करो, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, देह और देही का अलग अलग अनुभव करो। जितना आप इस शरीर से डिटैच हो जाओगे, आप परमात्मा से बाबा से कनेक्ट हो जाओगे। वहां से अटैच हो गए, यहां से डिटैच हो गए। तो तपस्या में जितना समय हो सकता है इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके स्वस्वरूप को देखो, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, स्वस्वरूप को देखो और फिर बाबा सामने आएगा, उसकी शक्तियों का अनुभव करो, बस और कुछ नहीं करना। ये रूढ़ियां कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें चिंतन में ला रहे हैं, अगर हो सकता है, वो सब्जेक्ट अलग है योग की, रूढ़ियां करना, अपने आप से बातें करना, ज्ञान का चिंतन करना। लेकिन अगर आप उस देह अभिमान से मुक्त होकर के एकदम शरीरी स्थिति में बैठ करके स्वस्वरूप को देख रहे हैं और बाबा की शक्तियों को कैच कर रहे हैं, शांति की, पवित्रता की, सुख की, आनंद की, वो शक्तियां आपके अंदर आती जा रही हैं, तो ये यथार्थ योग कहलाता है, ये तपस्या है। और इस तपस्या से ये जो नेगेटिविटी है, ये जो संस्कार है, जो कर्म इंद्रियों की उत्तेजनाएं हैं, वो नेचुरल खत्म होती जाएंगी। इसके लिए कोई मेहनत नहीं है, लोग इसको समाप्त करने की मेहनत कर रहे हैं, इससे युद्ध कर रहे हैं, कहते युद्ध चलती है, बहुत विकल्प आते हैं, बहुत इधर उधर के स्वप्न आते हैं, संस्कार इमर्ज होते, लेकिन यथार्थ योग की विधि को अगर आपने अपना लिया तो ये जो बातें कंप्लेन की हैं, पुराने संस्कारों की हैं, पुरानी बातें इमर्ज होती हैं, वो सब धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, इंटरेस्ट ही नहीं उनमें। इंटरेस्ट अगर ले रहे हो आप, उसके लिए आप कोई ऐसे दृश्य देख रहे हो, ऐसी कोई किताबें पढ़ रहे हो, ऐसी कोई सिनेमा फिल्में देख रहे हो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट में अगर ऐसे कोई अश्लीलता के चित्र देख रहे हो तो मन एकाग्र नहीं होगा। तपस्वी आत्माओं को इनसे अपने को वैराग्य चाहिए। तपस्या वैराग्य का भी नाम है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक त्याग नहीं, और जब तक त्याग नहीं तब तक तपस्या नहीं। पहले वैराग्य चाहिए इन हद की आकर्षण करने वाली चीजों से। आप सब चेक करो मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, क्यों जाती है। साधन तो बहुत हैं आजकल माया की दुनिया में, सब साधन उपलब्ध है हमारे लिए। आज छोटे छोटे बच्चे भी आज क्या क्या देख रहे हैं, सब पूरा ज्ञान रखते हैं। अगर मोबाइल उनको चलाना आ गया, मोबाइल देखते हैं, क्या क्या देख लेते हैं, सब ज्ञान है। इसलिए ध्यान देना, हम तपस्वी आत्माओं को इस प्रकार के रसों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। इनका त्याग करो, इनको छोड़ दो, नहीं चाहिए बस। बहुत अच्छे शुद्ध संकल्पों में रहना है। जरूरी चीजें जरूर यूज करो, मना नहीं किया बाबा ने, इंटरनेट मना नहीं किया। आज इंटरनेट से हम लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, आज कितने पत्र हमको लिखने पड़ते थे। दादी को इतनी बड़ी पोस्ट आती थी, मैं सारा दिन हाथ से लिखता रहता था। अभी दादी के पास जितनी पोस्ट आती है, कंप्यूटर पर थोड़ी देर बैठा, फटाफट एक लेटर बनाया और एक लेटर को 5-10 जगह कॉपी कर लिया और कॉपी करते 2 मिनट में इंटरनेट पर भेज दिया। न पोस्ट की जगह खर्चा, न इधर मेहनत, न उधर में, ऐसा मेहनत मुक्त हो गए। साधन है, यूज करो। लेकिन शायद बाबा ने मुझे इतना ही सिखाया और दूसरा को सिखाया नहीं, क्योंकि बाबा ही सिखाने वाला, मैं कोई बाहर सीखने नहीं गया। लेकिन इंटरनेट चलाता जरूर हूं, लेकिन उतना ही का आता है जितना जरूरी काम का है, रोज करता हूं। आप सब इस बात का ध्यान रखो, सेवा के लिए जो जरूरी है वो सीख लो, करो, लेकिन जो दुनिया भर की उसके अंदर ज्ञान है, बातें हैं, उनमें हमें नहीं जाना चाहिए। उनसे बेहद का वैराग्य, उनसे उपराम हो जाओ। जितना आप बेहद के वैराग्य और उपराम वृत्ति को धारण कर लेंगे, उतना तपस्या अपने आप नेचुरल हो जाएगी। तो 3 घंटा कम से कम बैठ करके तपस्या का एक लक्ष्य रखो। वैसे 4 घंटा बाबा ने कहा है, मैं 3 घंटा कह रहा हूं, अगर हो सकता है तो 4 घंटा नहीं, 3 घंटा तो जरूर लक्ष्य रखो, मुझे बैठ करके तपस्या करनी। और फिर चलते फिरते 4 रखो, 6 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा, जितना होता उतना करो। वास्तव में हमारी योगी जीवन है, योग लगाने वाले हम नहीं है। जीवन माना सदा की, खाना पीना, बात करना, उठना चलना फिरना, जो कर्म कर रहे हैं बाबा के साथ हैं, कंबाइंड है। 4 कंबाइंड स्वरूप बता देता हूं, ध्यान रखना। 4ों कंबाइंड स्वरूप इस समय संगम पर याद रहने चाहिए। एक हम आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप है, इनको तो कोई अलग ही नहीं कर सकता। अलग हो गया तो शरीर बेकार और आत्मा भी कोई काम की नहीं रहेगी। हम अभ्यास क्या कर रहे हैं, इस शरीर के अंदर मैं आत्मा अलग हूं, इस शरीर को मैंने धारण किया है, तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, शिव शक्ति हर आत्मा शक्ति स्वरूप है, चाहे पांडव है चाहे बहने हैं, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, शिव बाबा और आत्मा शक्ति, ये कंबाइंड स्वरूप हमारे को सदा साथ देता है, मदद करता है, और अगर मेरी कोई कमी कमजोरी है तो साथी सर्वशक्तिमान होने के कारण वो मदद मिल जाती है, कमजोरी समाप्त हो जाती है। तीसरा कंबाइंड स्वरूप बहुत स्मृति में रखना है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, फरिश्ता बनूंगा अंतिम शरीर छोड़ करके, वो नहीं, वो तो लास्ट की स्टेज है, चलते फिरते कर्म करते जो कर्म करो बाबा को अर्पित कर दो, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, फरिश्ता बन जाओगे। इस फर्श से रिश्ता नहीं, देह से, देहभान से, देह के संबंधों से रिश्ता नहीं, इन सब के साथ पार्ट बजा रहे हैं, किसी में फंसे हुए नहीं है, तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता है, कंबाइंड है, अलग नहीं है। और चौथा बाबा एक स्वरूप बताता है, चतुर्भुज हूं। चतुर्भुज की स्मृति शुरू शुरू में बाबा ने दादियों को यही पाठ पक्का कराया, सदा याद रखो मैं चतुर्भुज हूं। कभी भी ये नहीं कहोगे क्या करूं ये तो भाइयों का काम है, भाई करे आकर के, भाई कहें ये तो बहनों का काम है, ये होंगी तभी होगा, हम चतुर्भुज हैं, मेल और फीमेल दोनों के संस्कार कंबाइंड हैं और सब कोई के पास हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं मैं तो 84 जन्म ही मेल बना हूं, बहने भी ये नहीं कह सकती मैं 84 जन्म ही फीमेल बनी हूं, ऐसा है क्या, मेल भी बने होंगे ना कभी, तो कंबाइंड संस्कार तो है ना, दोनों संस्कार हैं और दोनों संस्कार इमर्ज रूप में रखो, इस समय किसी पर आप आधारित नहीं होंगे, किसी के लिए आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं, सब क्वालिटी अपने आप डेवलप होंगी, इमर्ज हो जाएंगी, ये संस्कार भी मेरे पास है, ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए चौथा स्वरूप चतुर्भुज का है। विष्णु चतुर्भुज तो कंबाइंड है ही, वो हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की स्मृति से वर्तमान समय में आत्मा कंबाइंड हूं, तो ये चारों अपने कंबाइंड स्वरूप को याद रख करके जितना समय हो गया बाबा के साथ खोए रहो, मस्त रहो, योगी जीवन बन जाएगी, तपस्वी स्वरूप बन जाएंगे, और ये बुराइयां विकार अपने आप छूट जाएंगे, इनके लिए त्याग करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं, जब अच्छाई को अपना लेते हैं तो बुराइयां अपने आप छूट जाती है, तो त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा, सिर्फ तपस्वी बनो, सच्चे बनो बाबा के साथ, सच्चाई से लगन जोड़ लो, तो ये सब विकार बुराइयां कमी कमजोरियां अपने आप छूट जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा समय के लिए कितनी देर बैठेंगे, बैठ सकते हैं 15 मिनट, सभी बैठेंगे 15 मिनट योग करा दें, बहुत जरूरी उठ जाओ, बीच में नहीं उठना, जिसको बहुत जरूरी उठ सकते हैं, और आना तो पीछे ही बैठ जाना, क्योंकि आप 10 बजे से बैठे हैं, कोई जरूरी है तो उठ सकते हैं। चलो अभी अपना आसन याद है, ब्रकुट्टी की कुटिया में इस अकाल तख्त पर विराजमान मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, अपने चमकते हुए स्वरूप को सभी देखने लगो दिव्य नेत्र से, मैं एक लाइट एक माइट एक सर्व गुणों का पुंज हूं, एक दिव्य चमकता हुआ सितारा हूं, मैं शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं, स्वरूप को देखो अनुभव करो और बिल्कुल लाइट हो जाओ, बाबा को आज ये एप्लीकेशन देना कि बाबा हम तो आपसे रोज ऊपर मिलने आते हैं, आज हमारे बीच में आप आ जाओ, और इस ब्रकुटी आसन पर मैं शुद्ध आत्मा जो पवित्र आत्मा चमक रही हूं इसके साथ आपको स्थान देती हूं, बाबा को अपने दिल तख्त के आसन पर बिठा लो, और उनके सानिध्य का, उनकी समीपता का, उनके पवित्र वाइब्रेशन का, उनकी शक्तियों का अनुभव करो। दोनों महान शक्तियां, बाप और दादा, मुझ आत्मा के बहुत समीप दिल तख्त पर ब्रकुटी आसन पर आकर विराजमान हुए। मैं आत्मा उनके समान सर्व शक्तियों का पुंज बनती जा रही हूं।
ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
आदरणीय राजू भाई का हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आज तपस्या का बहुत सुंदर फाउंडेशन हम सबके पास पड़ा है। ये 3 दिन में हम चेकिंग करें, जिस बात को, जिन जिन बातों को आदरणीय भाई साहब ने अंडरलाइन कराया है, जैसे आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जिन जिन बातों को तमन्नाएं हैं, जिन जिन बातों को अंडरलाइन कराया है, उसकी फुल चेकिंग करके हमें अपनी तपस्या को यहाँ से शक्तिशाली करके जाना है। एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।